ॐ नमः सिद्धेभ्यः भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय।
परम पूज्य गिरिराज सागर महाराज की जय। देवी सागर की जय।
चतुर्गति के संसार के चक्र में निरंतर गमनशील गतिशील जन्म मरण करते हुए जो संसारी प्राणी हम सबको आंखों अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, वे सभी प्राणी सभी ज्ञान के धारी हैं। सबके पास ज्ञान ज्ञान नाम की एक शक्ति है जिसको उस आत्मा के लक्षण के आधार से ज्ञान स्वभावी और दर्शन स्वभावी। ज्ञान और दर्शन ये दोनों लक्षण उस जीव के पास होते। छद्मस्त अवस्था जो होती है प्रथम गुण स्थान से लेकर, सबको ध्यान में है, बारहवें गुण स्थान तक छद्मस्त अवस्था होती है। छद्मस्त यानी अल्पज्ञ जीव अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा सीमित शक्ति को धारण करने वाला जो जीव होता है उसका नाम छद्मस्त। इसके पास भले ही चार प्रकार के ज्ञान भी क्यों न हो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये चार, इसको छद्मस्त ही कहा जाएगा क्योंकि क्षायोपशमिक ज्ञान पहले गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान तक होता है और जो जो ज्ञान क्षायोपशमिक होता है वो पराधीन होता है। जितने कर्मों का बादल हटा उतना जान पाता है और जितना नहीं हट पाया उतना ज्ञान नहीं पाता। ज्ञान की संपूर्ण शक्ति प्रकट हो जाए, सभी बादल हट जाएं, तो उस जीव के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की संपूर्ण शक्ति का प्रकट होना केवल ज्ञान है और प्रकट न होना क्षायोपशमिक ज्ञान है। ज्ञान क्षायोपशमिक और क्षायिक दो ही प्रकार का होता है। क्या औपशमिक ज्ञान भी होता है? नहीं होता। सम्यक दर्शन और चारित्र ये दोनों औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक तीनों प्रकार का होता है। सम्यक दर्शन तीनों प्रकार का, चारित्र भी तीनों प्रकार का होता है। औपशमिक चारित्र, क्षायोपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र। परंतु ज्ञान दो ही प्रकार का होता है, क्षायोपशमिक ज्ञान और क्षायिक ज्ञान। औपशमिक ज्ञान किसी के पास नहीं रहता। संसारी जीव ज्ञानावरणी कर्मों का उपशमन करके, संपूर्ण उपशमन करके कोई औपशमिक ज्ञान प्राप्त होता हो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि संसारी प्राणी के पास जो ज्ञान की शक्ति है वह किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत तो प्रकट रहता ही है, और यह थोड़ा बहुत जो प्रकट रहता है इसका संपूर्ण उपशमन नहीं हो सकता, यानी यह ढक नहीं सकता। ज्ञानावरणी कर्मों के उदय से, ज्ञानावरणी कर्म के बादलों से ये ज्ञान शक्ति कभी ढक नहीं सकती। ऐसा ज्ञान ही क्षायोपशमिक ज्ञान कहलाता है जो सदा प्रकट रहता है। अब इसका क्षायोपशम शक्ति जब अत्यंत जगन्य अवस्था रूप से प्रकट होता है तो वह निगोदी जीव के पास होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। निगोदी जीव के पास सबसे कम क्षायोपशम होता है, इसलिए थोड़ा सा स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से बहुत अल्प प्रमाण में ये मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान दोनों होते हुए भी उसका जगन्य क्षायोपशमिक शक्ति प्रकट रहती है। यही शक्ति अगर वो जीव द्विइंद्रिय बन जाए, यही शक्ति अगर वो जीव तीन इंद्रिय बन जाए, चौरेन्द्रिय बन जाए, पंचेन्द्रिय संगी बन जाए या असंगी बन जाए, क्रमशः बढ़ती हुई जाती है क्षायोपशम शक्ति। जिसको जितनी इंद्रियां मिलती हैं उन इंद्रियों के द्वारा अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वह जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसी का नाम क्षायोपशमिक ज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा से यह क्रमशः बढ़ता जाता है, विकसित होता है। सबसे ज्यादा ज्ञान विकसित होने की यदि शक्ति है तो वह किस गति के जीव को सबसे ज्यादा शक्ति होगी? सौध्नी पंचेंद्री जीव को। पर सौध्नी पंचेंद्री जीव चारों गति में पाए जाते हैं, किस गति के जीव को यह क्षायोपशमिक ज्ञान पूर्णतः विकसित हो सकता है? केवल मनुष्य गति का। क्षायोपशमिक ज्ञान जब विकसित होगा तो मति ज्ञानावरणी और श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का संपूर्ण विकास हो जाए तो वह जीव द्वादशांग श्रुत केवली बनता है। और इसका भी उत्कृष्ट क्षायोपशम मनुष्य पर्याय में ही है। और अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान भी मनुष्य गति में ही पूर्णतः प्रकट होते हैं, अन्य गतियों में नहीं। अल्प ज्ञान भी मनुष्य गति में ही उत्कृष्ट रूप से खिल सकता है, विकसित हो सकता है, और संपूर्ण ज्ञान की संपूर्ण अनंत शक्ति भी मनुष्य गति में ही प्रकट हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग क्या हैं इसका विचार किया जाए तो आपको पता चलेगा कि हम तो हम हैं, हम तो हम हैं, पता तो चल जाता है। यानी हमारे पास केवल ज्ञान की शक्ति भी है, हमारे पास मना परे ज्ञान प्रकट करने की शक्ति भी है, योग्यता है, और अवधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान को भी विकसित करते करते द्वादशांग श्रुत केवल ही मैं बन सकता हूं, वो भी संयम के साथ। संपूर्ण श्रुत ज्ञानावरणी और मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होना एक संयमधारी दिगंबर मुनि को ही संभव है। क्या श्रावक अवस्था में संभव है? द्वादशांग श्रुत केवली होना श्रावक को संभव है या मुनि को? मुनि को ही संभव है। इससे पता चलता है कि मुनि को संभव है और श्रावक को संभव नहीं, गृहस्थ अवस्था में संभव नहीं, देव गति में संभव नहीं, त्रिरिंची गति में संभव नहीं और नरक गति में संभव नहीं। ये संभव क्यों नहीं है? तो असंयम इसके लिए कारण है। और असंयम की उत्पत्ति में कितनी कषाय कारण है? अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन, इस प्रकार चार प्रकार की कषाय है। इसमें असंयम भावों को उत्पन्न करने में कितनी कषायों का सहयोग हमें मिलता है असंयम की उत्पत्ति के लिए? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चार चार के हिसाब से गिनो उनको। तो अनंत अनुबंधी के उदय में जीव असंयमी रहता है, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में जीव असंयमी रहता है, प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में भी जीव असंयमी रहता है। पर इन सब का उपशमन हो जाए तीनों का, और तीनों के चार चार भेद हैं, क्रोध मान माया लोभ, तो चार 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 बारह, इन बारह कषायों का उपशमन करके उदय में एक संज्वलन कषाय को रखते हैं तो उस जीव को संयम प्राप्त करना संभव है या नहीं? अवश्य है। और मुनि को यही होता है। दिगंबर मुनि महाराज पर पदार्थों की प्रति इच्छा से रहित होते हैं, चेतन अचेतन द्रव्यों के प्रति वे इच्छा मुक्त रहते हैं, हमेशा उनकी मांग नहीं करते। उनका त्याग हो गया है तो त्यागे हुए पदार्थों में से किसी एक परमाणु मात्र की भी इच्छा अंतरंग में नहीं रखते कि मुझे यह आवश्यक है और ये मुझे मिल जाए, ऐसा भाव नहीं रखते। यदि त्यागे हुए उन पदार्थों में से थोड़ा बहुत या सारा भी एक परमाणु से लेकर थोड़ा बहुत या सारा भी इच्छा करने लगते हैं उनको रखने का, उसके स्वामित्व को धारण करने का भाव धारण कर लेते हैं, तो फिर वे मुनि महाराज संयम की कोटि में नहीं रहेंगे। संयम बिगड़ जाएगा, संयम असंयम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे कन्वर्ट होने के उपरांत विचार आता है कि जब मेरा संयम छूट रहा था या संयम छूटा, जब परिग्रह की इच्छा हो गई, उसके अधिकार के भाव आ गए, उसके अधिकार के भाव आ गए, उसकी इच्छा हो गई, तो उस वक्त कौन सी कषाय उदय में आई होगी? तीन में से। छठे से पांचवें में गिरने के लिए दस परिग्रहों में से कुछ परिग्रह की आशा उत्पन्न हो जाए या एक परमाणु मात्र के प्रति भी आशा उत्पन्न हो जाए। दस को त्यागा था, उसमें से कुछ चाहिए या एक परमाणु मात्र भी चाहिए, क्योंकि मुझे उसका स्वामी बनना अनिवार्य है, आवश्यक है। इस प्रकार का मूर्छा भाव जब प्रकट होता है तो वे छठे में रह नहीं सकते, कहां आएंगे? पांचवे में आएंगे। एक देश परिग्रह के प्रति अपेक्षा हो जाए तो पांचवे में आएंगे, और फिर संपूर्ण परिग्रह मुझे चाहिए, दसों परिग्रह चाहिए, सब रखने के भाव आए और ग्रहण करके मैं रखूंगा, उसका स्वामी बनूंगा, उसका अधिकारी बनूंगा, उसका स्वामित्व मुझे रहेगा और रहना चाहिए, ऐसे परिणाम हो जाए? नहीं। चौथा गुण स्थान होगा। अभी तो सम्यक्तु का घात नहीं किया है, केवल परिग्रह की अपेक्षा हो रही है, इसलिए अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में इस प्रकार के भाव होंगे कि मुझे सब चाहिए, एक देश नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत पर्याप्त नहीं है, जितना छोड़ा था सब कुछ चाहिए, दसों चाहिए, दसों प्रकार के परिग्रह चाहिए, लेकिन सम्यक्तु का घात नहीं किया है अभी भी, इसलिए अनंतानुबंधी का उदय नहीं हुआ, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्तु का भी घातक है और चारित्र का भी घातक है। सम्यक्तु का यदि इसके साथ घात कर लेता तो अनंतानुबंधी का भी उदय आ जाता। दस प्रकार के परिग्रह तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके साथ मुझे अनायतन भी चाहिए, ऐसे भाव। अनायतन किसको कहते हैं? जो आत्म कल्याण के क्षेत्र में हमारे लिए सहयोग नहीं दे सकते, उल्टे बाधक ही हो सकते हैं, बाधक ही रहते हैं, ऐसे अनायतनों के प्रति इच्छा भाव, उनको भजने के भाव, और अनायतनों को भजने के भाव क्यों आते हैं? क्योंकि मन में परमार्थ के प्रति कोई रुचि, श्रद्धा, आस्था नहीं है, आत्म तत्व के प्रति रुचि, श्रद्धा, आस्था नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जो परमार्थ के प्रति श्रद्धा से च्युत हुआ है और अनायतन की इच्छा कर रहा है, तो अनायतन के सहारे से, अनायतन के सहयोगों से क्या चाहता है वो? क्या चाहता क्या है अनायतन को भज करके? ये वही इंद्रिय विषय चाहता है। आत्म तत्व की रुचि तो समाप्त हो गई है, जब आत्म तत्व की आस्था समाप्त होती है, रुचि समाप्त होती है, उस वक्त क्या चाहेगा? दो ही प्रकार के सुख है ना, आत्म सुख या तो इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख पर पदार्थों से मिलता है, और आत्म सुख आत्मा के आश्रय से मिलता है, आत्मा का सुख आयतनों के सहारे से मिलता है, आयतन सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र हैं, और अनायतन जो सच्चे नहीं हैं, ऐसे तीन अनायतन हैं, यानी कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र। कु का क्या अर्थ? कुदेव, कु यानी कुत्सित, कुत्सित यानी दोष सहित, दोष यानी जो गुण नहीं है, गुणों के धारी नहीं है, ऐसे दोषवान आत्मा दोष के होने से कुत्सित कहलाता है। कुत्सित शब्द को कु लेकर के कुदेव, कु लेकर के पुगुरु, कु लेकर के कुशास्त्र, ऐसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। कु यानी दोष, सु यानी गुण, सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र, सु यानी गुण और कु यानी दोष। ये दोष क्या है? कुदेव के पास दोष रहते हैं तो वो दोष क्या है? तो वह कुदेव संयमी नहीं है, असंयमी है। कुगुरु यानी क्या है? वह गुरु संयमी नहीं है, असंयमी है। असंयम दोष है और संयम गुण है। ये संयम गुण दोनों के पास होना चाहिए, देव के पास भी होना चाहिए और गुरु के पास भी होना चाहिए। देव के पास कौन सा संयम होना चाहिए? संयम में प्रकार है ना, थोड़ा याद करेंगे, संयमा संयम, सामायिक, चिरोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। हाँ, ये संयम है, सामायिक, चिरोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। संयम पांच प्रकार के हैं। संयमा संयम को छोड़ो, क्योंकि उसमें असंयम है इसलिए संयम की कोटि में उसको ले भी नहीं सकते। जो मिक्स है, मिश्रित है, पंचम गुण स्थान वाला संयमा संयम, उसके साथ 11 अविरतियां जुड़ी हैं और एक विरति जुड़ी है, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग। ये विरति है, ये व्रत है, ये संयम है। परंतु उस संयम के आसपास घेरे हुए अविरतियां यानी असंयम कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। तो 11 प्रकार के असंयम के बीच एक प्रकार का संयम जीवित है। 11 तो असंयम और एक संयम, तो परसेंटेज ज्यादा किसका है? असंयम का। इसलिए परसेंटेज असंयम का अधिक है। इस कारण से उस जीव को गुरु के कोटि में रखा नहीं जाएगा। पंचम गुणस्थान वर्ती जीव 11 प्रकार के असंयम को और एक प्रकार के संयम को धारण करते हैं, तो ये गुरु के कोटि में रखा जाए क्या? नहीं। यही कारण है नमोकार मंत्र में पंचम गुणस्थान वर्ती जीव नहीं है, क्योंकि पंचम गुणस्थान में अभी भी 11 प्रकार का असंयम मौजूद है, इसलिए एक प्रकार का वह संयम पूजनी नहीं हो सकता, भजनी नहीं हो सकता, गुरु की कोटि में नहीं आ सकता और नमोकार मंगलमय नमोकार मंत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मंगलमय नमोकार मंत्र के अंदर प्रवेश करने का सामर्थ्य केवल संयमी को होता है, क्योंकि संयम ही मंगल है संसार में, और जो मंगल है वही गुण है। संयम गुण भी है और संयम जिसके पास होता है उस संयम गुण के कारण से आत्मा मंगल भी है। तो चत्तारी मंगल, उसमें अरहंत मंगल है, संयम के कारण से मंगल है। सिद्ध भगवान मंगल है, संयम के कारण से मंगल है। आचार्य परमिष्टि संयम के कारण से मंगल है। उपाध्याय परमिष्टि संयम के कारण से, और साधु परमिष्टि भी संयम के कारण से। इनके पास केवल संयम ही है। 12 प्रकार का जो असंयम है उसमें से एक भी प्रकार का असंयम उनके पास नहीं है, इसलिए मंगल की कोटि में आ गए। और संसार में जो जीव मंगल की कोटि में आते हैं उन्हीं को आयतन कह सकते हैं। किस प्रकार का आयतन? भजनीय, पूजनीय, आराधनीय, वंदनीय आयतन। आयतन वैसे 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र, और इनको भजने वाले आत्मा को भी आयतन कहा है, श्रद्धावान आत्मा। तो भजने वाला आत्मा सम्यक दृष्टि ही होगा, सम्यक्तवान होगा, मिथ्यात्वान नहीं रहेगा ना। आयतन को भज रहा है और अनायतन को त्यागा है। तो आयतन को भजने वाला आत्मा संयमी तो नहीं है, असंयमी भी हो सकता है, पर सम्यक दृष्टि है। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव आयतन है कि नहीं? आयतन है। इसलिए आयतन में भी हमें 2 भाग करने पड़ेंगे, पूजनीय आयतन और आदरणीय आयतन। देखो, पकड़ो क्या बोला जा रहा है। आयतन में 3 भेद हैं या 6 भेद हैं टोटल, परंतु उसमें से पूजनीय आयतन कितने और आदरणीय आयतन कितने? तो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव आयतन है, चाहे वो देव हो, नारकी हो, तिरंच हो, चाहे मनुष्य हो, सम्यक दर्शन होने मात्र से वो आदरणीय है। सम्यक दृष्टि तिरंच भी आदरणीय हो गया, सम्यक दृष्टि नारकी जीव भी आदरणीय है। क्या पूजनीय है? आदरणीय है। आदर और पूजा, इन दोनों में जो अंतर है, व्यत्यास है, फर्क है, वो ये है। आदरणीय का अर्थ होता है पूजना नहीं, केवल आदर करना, उनके लिए आवश्यक वस्तु देकर या सामने आने पर आदर व्यक्त करने का नाम आदरणीय। जैसे आ गया वो, तो एक अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए दूसरा अविरत सम्यक दृष्टि जीव नमोस्तु कहेगा या जय जिनेन्द्र बोलेगा? जय जिनेन्द्र बोलेगा। क्या नमोस्तु कहकर एक अर्घ्य देगा? उदक चंदन तंदुल अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अविरत सम्यक दृष्टि जीवाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ये आदर है क्या? जिन वस्तुओं को हाथ में लेकर के, मंगल द्रव्यों को हाथ में लेकर के हम जिसको अर्पण करते हैं वो आत्मा भी मंगल चाहिए। ये द्रव्य मंगल है तो आत्मा भी मंगल होना चाहिए, और मंगल 4 ही है। ये अर्घ्य जो चढ़ाया जाएगा इसको मंगल कहा, मंगल द्रव्य कहा। मंगल द्रव्य को अमंगल के लिए चढ़ाओगे, और चढ़ाते समय क्या बोलोगे फिर? अमंगल किस कारण से है वो जीव? असंयम के कारण से। और फिर असंयम मोक्ष का कारण है क्या? अनर्घ्य पद का कारण है क्या? जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं, जन्म जरा मृत्यु विनाश का कारण असंयम है क्या? संयम है, संयम है। तो संयम मंगल है, असंयम अमंगल है। तो असंयम को भी अर्घ्य चढ़ाओगे, मंगल द्रव्य चढ़ाओगे, तो ये मंगल द्रव्य असंयम यम को चढ़ाने के लिए नहीं, जो पूजा के उद्देश्य से जुटाए गए हैं आठ द्रव्य, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप इत्यादि संग्रह किए गए हैं, इसको पवित्र बनाया गया है। और मन में क्या भाव है? पवित्र स्थान को, संयम स्थान को ग्रहण करने वाला आत्मा वो मंगल है। उस मंगल आत्मा के गुणों की, यानी संयम गुण की पूजा के लिए, उनके सम्यक्त गुण की पूजा के लिए, उनके ज्ञान गुण की पूजा के लिए, उनका सम्यक दर्शन और उनका ज्ञान, वो दोनों भी मंगल हैं, अमंगल नहीं। किस कारण से मंगल हो गए हैं? संयम के कारण से। संयम के कारण से दोनों में अतिशय प्रकट हो गया। क्या अतिशय? कर्मों का संवर और निर्जरा होना, विशिष्ट निर्जरा होना, गुण श्रेणी निर्जरा होना, ये एक अतिशय कहलाता है। और वह अतिशय सम्यक दर्शन के पास पहला नहीं था, अब वह अतिशय अब प्रकट हो गया। किस कारण से? संयम के आगमन के कारण से। जहां संयम का आगमन हो गया, वह सम्यक दर्शन भी जो पूर्व में असंयम के साथ संगति कर रहा था, असंयम के संगति में था, वह संयम के संगति में आ गया, या संयम ही उसके संगति में आ गया, तो वो संयमी हो गया। सम्यक दर्शन संयम पूर्ण है, सम्यक ज्ञान भी संयम पूर्ण है, और संयम तो संयम ही है। उस संयम के साथ ये सम्यक दर्शन जुड़ गया, उस संयम के साथ ये ज्ञान जुड़ गया, तो संयम भी मंगल हो गया। क्या संयम को सम्यक्तु के बिना मंगल कहा जा सकेगा? देखो, विशेष बात है, संयम के साथ सम्यक दर्शन नहीं जुड़ेगा तो संयम पवित्र नहीं होगा, मंगल नहीं होगा। और संयम सम्यक दर्शन के साथ नहीं जुड़ेगा तो सम्यक दर्शन मंगल नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। ज्ञान असंयम, असंयम वाला ज्ञान जब तक संयम से नहीं जुड़ेगा तब तक स्वयं मंगल नहीं बनेगा। जब तक संयम से यह सम्यक ज्ञान नहीं जुड़ेगा तब तक संयम भी मंगल नहीं बनेगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान से रहित संयम मंगल की कोटि में आएगा कि अमंगल की कोटि में?
अमंगल,
अमंगल की कोटि में। देखो, सारे रहस्य खुल गए, बड़ी 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 बातें खुल गई। इसको यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान प्रतिपादित जो धर्म तत्व है, आत्म तत्व है, सिद्धांत है, वो प्राणी मात्र के लिए ग्रहण करने योग्य है, प्राणी मात्र के लिए शरण जाने योग्य है, क्योंकि उन तत्वों में कहीं से कहीं तक दोष नहीं निकलेगा, ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। कितना निर्मल सिद्धांत! वो कहते हैं संयम लेने मात्र से पूजनीयता नहीं आएगी, संयम आ गया और सम्यक दर्शन नहीं आया तो उस सम्यक दर्शन से रहित संयम को क्या मंगल की कोटि में रखोगे, पूजनीयता की कोटि में रखोगे? उस संयम की क्या पूजा की जा सकती है? वह संयम भी असंयम की कोटि में ही रहेगा जो सम्यक दर्शन से रहित है। वह संयम यदि सम्यक दर्शन से रहित है तो उस असंयम का गुणस्थान कौन सा होगा? उस संयम का गुणस्थान कौन सा होगा जो सम्यक दर्शन से रहित संयम है? हाँ, पहले पहले से तीसरे तक कोई भी गुणस्थान हो सकता है, तीसरे तक तो सम्यक दर्शन है ही नहीं, किंतु पहले से तीसरे तक किसी जीव ने अपने जीवन में संयम धारण कर लिया तो क्या वह संयम वंदनीय है, पूजनीय है? नहीं है। किस कारण से नहीं है? सम्यक्तो के न होने से। अच्छा, वही संयमी तीसरे गुणस्थान या दूसरे गुणस्थान पहले गुणस्थान वाला यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है और चतुर्थ गुणस्थान में आ जाता है और पहले से संयमी तो है ही, संयम को तो धारण कर रखा है मिथ्यात अवस्था में ही, अब वह सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेता है और चौथे गुणस्थान में आ जाता है, तो उस आत्मा को जो सम्यक दर्शन से भी युक्त है और संयम भी है तो उनको क्या मंगल की कोटि में रखा जाएगा, वंदनी कहा जाएगा?
नहीं,
नहीं कहा जाएगा। फिर क्या नहीं 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 सुनो सुनो बोलो नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सुनो। संयम तो है, सम्यक दर्शन भी आ गया, गुणस्थान कौन सा बन गया? चौथा गुणस्थान बन गया। परंतु चौथे गुणस्थान में जीव को जो वो संयम धारण कर चुका है वह संयम संयम कहलाएगा? वह संयम भी असंयम ही है जिसके साथ अविरत गुणस्थान हो। हां, जिसके साथ अविरत गुणस्थान हो वह संयम भी असंयम है। तो असंयम क्यों है? असंयम भाव आ गए हैं। असंयम भाव क्यों आए हैं? तो परिग्रह को त्याग करने के परिणाम ही नहीं है, वहां भाव नहीं है। तो भाव नहीं और त्याग दिया, ऐसा भी हो सकता है ना? भाव नहीं है और त्याग दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना? हो सकता है। कैसा हो सकता है? मुझे भावी काल में बहुत सारे परिग्रह और मिलेंगे, अगर ये 10 परिग्रह इस जन्म में इस पर्याय में त्याग करूंगा तो निदान बंद के साथ क्या परिग्रह त्यागे नहीं जा सकते? त्याग सकते हैं। और वैसा 10 परिग्रह उसने त्याग दिया तो द्रव्य संयम तो आ गया, परंतु कौन सा संयम नहीं आ पाया? भाव संयम नहीं आ पाया। तो भाव संयम न आने के कारण से भाव पक्ष में वह असंयम है और व्रतों के पक्ष में, बाह्य पक्ष में, द्रव्य पक्ष में संयम है। तो भाव संयम से रहित द्रव्य संयम भी असंयम है या संयम है? असंयम है। फिर सम्यक दर्शन बेचारा क्या करेगा? सम्यक दर्शन तो ये चाहता था कि इस द्रव्य संयम को हम मंगल बनाएं, मंगलता प्रदान करें, इस इच्छा से वो आ गया। परंतु व्यक्ति निदान बंद के माध्यम से भावी परिग्रहों में अपेक्षा रखता है और वर्तमान परिग्रह को पूर्ण त्याग करने को राजी हो गया है और दिगंबर दीक्षा ले ली उसने। ले सकता है कि नहीं? ऐसा ले सकता है। अभवी जीव तो यही करता रहता है, इसके अलावा तो दूसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभवी के लिए, अभवी के लिए भवी जीव ऐसा भी कर सकता है और वैसा भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास गुणस्थानों को चढ़ने की योग्यता है। वो चौथे गुणस्थान में भी आ सकता है, पहले गुणस्थान में भी रह सकता है। तो ऐसा कोई भव्य आत्मा द्रव्य संयम को धारण करके पहले गुण स्थान में है तो वह आयतन की कोटि में है या अनायतन की कोटि में? यही बातें हमको पता रहना चाहिए। यह आत्मा आयतन अवस्था को कब प्राप्त होता है और आयतन अनायतन अवस्था में कब रहता है, यही ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। ये जिनेंद्र भगवान का प्रतिपादित सूक्ष्म ज्ञान यदि आपको नहीं रहेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत महंगा पड़ेगा, सम्यक दृष्टि बनना भी महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने कहा, सत्संग भी करो तो आयतनों का सत्संग करो और कुसंग त्यागो तो अनायतनों का कुसंग त्यागो, इतना उन्होंने कह दिया। इतना कह दिया तो हम वो काम तो नहीं करते, और वो काम नहीं करेंगे, हम दुस्संगति में अटके रहेंगे तो सम्यक दर्शन का लाभ नहीं होगा। दुस्संगति क्योंकि उनमें मंगलपना नहीं है, उनमें गुण नहीं है, उनमें असंयम पाया जा रहा है, तो असंयम को भजनी क्यों समझ रहे हैं? असंयम अवस्था को भजनी, पूजनी, वंदनी क्यों समझ रहे हैं? क्या उससे कुछ लाभ है? परमार्थ का लाभ होना है, आत्मलाभ, सम्यक दर्शन का लाभ? असंयमी का दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा या संयमी जीव का दर्शन करने से? संयमी के दर्शन करते करते सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो हो सकती है, परंतु उसमें भी जिनेंद्र भगवान ने और डीप सावधानियां दी कि केवल द्रव्य संयमी का दर्शन करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से जो संयम को धारण करने वाला आत्मा होता है वह आयतन होता है, उस आयतन का दर्शन करते करते तुमको सम्यक दर्शन होगा। तो महाराज, भाव संयम को कैसे जाने? सवाल तो यही है जो आपको सवाल आ जाता है ना दिमाग में, आपको आते ही मेरे में झलक जाता है वो ऑटोमेटिक। इनके माइंड में वही क्वेश्चन आ रहा होगा, आएगा, और आता है तो मेरे दिमाग में भी वही क्वेश्चन आ जाता है, फिर कैसे समझे भाव संयम को और द्रव्य संयम को? तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं, जो द्रव्य संयमी रहेगा वह कभी भी द्रव्य संयम का भंग नहीं करेगा, क्योंकि वही उसका उसकी दुकान है। उस दुकान के बिना वो जो चाहता है परभव में बहुत सारे परिग्रहों को, अभी जो त्यागा है समस्त 10 परिग्रहों को बाह्य रूप से और द्रव्य संयम धारण किया है, ये द्रव्य संयम बिगड़ जाएगा तो वहां पर मिलना बंद हो जाएगा, उसकी गारंटी खत्म हो जाएगी। यहां अगर बिगड़ गया तो वहां गारंटी खत्म होती है। तो ये जो संकल्प लिया है कि मैं अपने जीवन में 10 प्रकार के परिग्रहों को कभी ग्रहण नहीं करूंगा, मरण पर्यंत नहीं ग्रहण करूंगा, ये मरण पर्यंत आजीवन पर्यंत धारण करना ये बाह्य महाव्रत कहलाता है। जीवन पर्यंत जिस वस्तु को धारण किया जाए, त्याग किया जाता है, उसको महाव्रत कहते हैं, महान व्रत। और कुछ समय के लिए, कुछ समय की पाबंदी के लिए, इतने इतने समय के लिए मैं छोड़ूंगा, ऐसा जो कहते हैं उसको अनुव्रत कहते हैं। अनुव्रत में काल मर्यादा से त्याग किया जाता है और महाव्रत में जीवन पर्यंत के लिए त्यागा जाता है। और वह जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर चुका है, कोई भी 10 प्रकार के परिग्रहों में से एक ही प्रकार के परिग्रह की अपेक्षा नहीं रखता, अपेक्षा रखता है लेकिन परभव की अपेक्षा रखता है, ई भव की परिग्रहों में अपेक्षा नहीं रखता। ये 10 नहीं चाहिए, बाद में 20 चाहिए। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं, डिपॉजिट, अभी 5 लाख रखते हैं, 10 साल मुझे 5 लाख की कोई आशा नहीं, और फिर 10 साल के बाद, मालूम है ना गणित, 10 साल के बाद कितना मिलेगा? 20 लाख मिलेगा। और 20 लाख की आशा के कारण से ही 5 लाख की आशा आपने 10 साल के लिए छोड़ दी है। बीच में आशा करोगे तो वो 20 नहीं मिलेगा, हाँ 10 नहीं मिलेगा, 5 रखा है 10 मिलने वाला है, गारंटी है। परंतु ये गारंटी खत्म भी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। कब? जब वर्तमान के उस 5 लाख में से कुछ निकालोगी बाहर, तो डिपॉजिट तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और ऐसा मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है, आपको आवश्यक हो तो मिल सकता है। तो यहां पर भी 10 प्रकार के परिग्रहों को त्याग दिया है, तो बीच में आप ग्रहण करना चाहो तो स्वतंत्र ग्रहण कर सकते हैं, परंतु वो ग्रहण नहीं करने वाला, क्योंकि डिपॉजिट फिक्स किया है 10 लाख डिपॉजिट फिक्स, और मांग रहा है 20 लाख। तो ये द्रव्य संयमी है। 10 परिग्रह जो अभी इस जीवन में नहीं चाह रहा है, इसी को द्रव्य संयम कहते हैं। द्रव्य संयम इसलिए कहते हैं कि संपूर्ण बाह्य परिग्रह छूट गए तो कोई भी पर प्राणी की हिंसा होना नहीं, तत्संबंधी पाप लगना नहीं। परिग्रह का त्याग हो गया तो जीव हिंसा कैसी होगी? अब देख देख चलेगा, हिरापद समिति से चलेगा, उठते बैठते समय पिंची रख करके बैठेगा उठेगा। इतनी बड़ी जीव रक्षा भी करेगा, और ये जीव रक्षा करना, वो परिग्रह का त्याग करना, ये प्राणी संयम के लिए भी कारण बन रहा है और इंद्रिय संयम के लिए भी कारण बन रहा है। जो इंद्रिय संयम द्रव्य संयम है, द्रव्य इंद्रिय संयम, द्रव्य इंद्रिय संयम, उसके लिए भी तो कारण है। हम विषयों से दूर हैं, उसके स्वामित्व से, उसके अधिपतित्व से दूर हैं, सब त्याग दिया है, डिपॉजिट में रखा है, तो हमारी इंद्रियां उनके स्वामित्व को धारण नहीं कर रही है इस जन्म में, पर जन्म में अपेक्षा है, पर जन्म के लिए अपेक्षा है, लेकिन इस जन्म के लिए उपेक्षा है। पर जन्म की अपेक्षा और इह जन्म की उपेक्षा जिसको होती है पर परिग्रहों में, वो द्रव्य संयमी बन जाता है, और उसके पास दोनों प्रकार के संयम आ जाते हैं, द्रव्य प्राणी संयम और द्रव्य इंद्रिय संयम। विषयों के न होने से, विषयों का स्वामित्व न होने से द्रव्य इंद्रिय संयम भी आ गया, किंतु भाव इंद्रिय संयम क्यों नहीं आया? हाँ, भावी में अपेक्षा है इसलिए। और भाव प्राणी संयम क्यों नहीं आया? भाव प्राणी संयम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो परिग्रह पाप का कारण, जीव हिंसा का कारण है क्या? नहीं, जो भावी में मांग रहे हैं, तो भावी में तो हम जीव द्रव्य जीव की हिंसा करेंगे, इस भाव में नहीं करेंगे। ऐसा ही हो गए ना, वो भावी में परिग्रह पर वस्तु चाहिए है तो आप तैयार हैं काय के लिए? जीव हिंसा के लिए भी, प्राणी हिंसा के लिए भी। तो भाव प्राणी संयम, भाव प्राणी संयम प्राप्त नहीं है, और भाव इंद्रिय संयम वह भी प्राप्त नहीं है। भाव पक्ष का संयम घाटे में पड़ गया और द्रव्य पक्ष का संयम जीवन में आ गया, और ऐसा संयम द्रव्य पक्ष का ही केवल जीवन में आया है तो वो असंयम की कोटि में है या संयम की कोटि में? असंयम की कोटि में। भगवान उसको संयम की कोटि में रखना नहीं चाहते, वो कहते हैं केवल द्रव्य असंयम भी, जो भाव संयम से रहित है, ऐसा द्रव्य संयम भी असंयम ही है, क्योंकि भाव पक्ष के साथ नहीं है। और यदि भाव संयम उससे जुड़ गया तो वो समीचीन हो गया, सम्यक हो गया, कर्मों के समर और निर्जरा के लिए कारण बन गया, मोक्ष मार्ग के लिए कारण बन गया, अरहंत अवस्था की प्राप्ति के लिए कारण बन गया, आत्म सिद्धि के लिए कारण बन गया, ध्यान सिद्धि के लिए भी कारण बन गया, उसके कई लाभ हैं। परमार्थ से तो 100% लाभ जो होगा वो द्रव्य संयम और भाव संयम इन दोनों के मिलन से होगा। और 100% लाभ नहीं है, 50% लाभ है, 50% लाभ का मतलब कौन सा लाभ? आत्मलाभ। आत्मलाभ तो जीरो, आत्मलाभ परमार्थ लाभ है, आत्मकल्याण वो तो जीरो है, परंतु 50% जो लाभ है वो भौतिक लाभ, यानी 10 रख रहा हूं तो 20 मिल रहा है, वो 20 ही मिल रहा है, 40 नहीं मिल रहा है। लेकिन भाव संयमी को 10 रखता है और 40 पाता है, इसका क्या कारण, इसमें क्या फर्क? भाव संयम के कारण से सातिशय पुण्य का बंध होता है, उसका फल 40। सातिशय पुण्य का बंध किसको होगा? भाव संयमी को होगा। और द्रव्य संयमी को, निदान बंध वाले को, निरतिशय पुण्य का बंध होगा, निरतिशय, अतिशय से रहित, निरतिशय, निरतिशय पुण्य का बंध होगा। तो इनको कितना मिलेगा? 10 रखा है 20 मिलेगा, और उन्होंने 10 रखा है 40 मिलेगा। वो जो 20 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो किसकी देन? हाँ, भाव संयम की देन, भाव संयम की देन है। और ये भाव संयम की देन होने से भगवान कहते हैं कि देखो, परिग्रह 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 परिग्रह, रात दिन परिग्रह के पीछे संसारी प्राणी पड़ा हुआ है, बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भी। ये द्रव्य लिंग को धारण करके, द्रव्य व्रतों को धारण करके, द्रव्य संयम को धारण करके, भाव संयम की उपेक्षा करके 20 पा रहा है, ये मांग की देन है, आशा की देन है, जो कि 20 नुकसान में गया। 40 की जगह कितना मिल रहा है? 20 मिल रहा है। नुकसान में कितना गया? 20 नुकसान में गया। अगर भाव संयम को साथ ले ले तो इसको 40 मिल सकता है क्या? नहीं
मिलेगा,
मिलेगा, परंतु क्या करें, इस जीवात्मा की अज्ञान दशा ऐसी ही है। ये आत्मा समझता है अज्ञान अवस्था में कि मुझे मांगने से ही मिलता है, नहीं मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? कहीं भी जाए, मंदिर जाता है तो ये मांग को लेकर के ही जाता है। और जिनेंद्र भगवान कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। जो मांगता नहीं है वो द्रव्य संयमी भी है और भाव संयमी भी है, और जो मांगता है वह कुछ त्याग भी कर रहा है, सब कुछ भी त्यागा है, तो द्रव्य संयमी है लेकिन भाव संयमी नहीं है। तो ऐसे जो द्रव्य संयम को धारण करने वाले मुनि हैं उनको भी असंयमी कह रहे हैं। असंयमी जीव अनायतन कहलाते हैं। ये अनायतन की परिभाषा देखो, किसी कुदेव कुश कुगुरु कुशास्त्र तक सीमित मत बनाओ इनको। आपकी दृष्टि बहुत दूर जाकर के टिकती है और अनायतन की परिभाषा बनाकर लौटती है, और फिर यह समझ में नहीं आता कि अविरत सम्यक दृष्टि जीव बाह्य परिग्रही है, दसों प्रकार का परिग्रही है, इसको भी आयतन कहा, लेकिन पूजनीय आयतन कहा क्या, आदरणीय आयतन कहा, आदरणीय आयतन कहा, और पूजनीय आयतन फिर कौन, हाँ, भाव संयम और द्रव्य संयम दोनों संयम को धारण करने वाले आयतन की कोटि में होते हैं, और जो जो आयतन के कोटि में है वो सब नमोकार मंत्र में है, और जो जो आयतन की कोटि में नहीं है वे सब नमोकार मंत्र में भी नहीं है। जैसे कि चौथे गुण स्थान में भी दस परिग्रह को त्याग करके द्रव्य संयम धारण कर लिया, आयतन के कोटि में है क्या,
नहीं
है। फिर पूजनी है क्या,
नहीं।
पूजनी नहीं है। आठ मंगल द्रव्यों से पूजा करे, नमोस्तु करने के योग्य है क्या,
नहीं।
वो भी नहीं है। फिर आदरणीय है क्या, नहीं,
नहीं।
आदरणीय है, तो आदर तो आप सबका कर सकते, आदरणीय कौन नहीं है संसार में, नारकी जीव भी आदरणीय है। आदरणीय तो सब है, पूजनीय सभी है क्या,
नहीं,
नहीं है। तो पूजा किसकी करना ये पता चल गया आज, आज के प्रवचन में पूजा किसकी करना, गुणों की पूजा करना। वो गुण द्रव्य संयम भाव संयम ये दोनों क्या अकेला,
दोनों।
तो पूज्यत्व जो आता है, पूज्यता जो आती है, वह दोनों संयम हो तो पूज्यता आती है, एक संयम हो तो नहीं आती। एक संयम हो तो वह पांचवें में भी रह सकता है गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में भी रह सकता है, चौथे में भी रह सकता है, तीसरे में भी रह सकता है, दूसरे में भी रह सकता है, और पहले में भी रह सकता है, कहीं भी रहे वो एक पक्ष के संयमी है, द्रव्य संयमी है। और उस द्रव्य संयम के साथ यदि भाव संयम जुड़ गया तो आयतन के कोटि में निकल जाता है, और नहीं जुड़ पाया तो अनायतन की कोटि में रहता है। तो अनायतन की कोटि में जो रहता है वो भी आयतन भी है और अनायतन भी है। देखो अनायतन कौन कौन है, तो पहले गुणस्थान के द्रव्य संयमी, दूसरे गुणस्थान के द्रव्य संयमी, और तीसरे गुणस्थान के द्रव्य संयमी, इनको तो कहेंगे अनायतन, और चौथे गुणस्थान के द्रव्य संयमी, पांचवें गुणस्थान के द्रव्य संयमी, इनको तो कहेंगे आयतन, परंतु पूजनीय आयतन कहेंगे या अपूजनीय, अपूजनीय आयतन। बारीक से बारीक कथन किया आयतनों को लेकर के, और जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही कहा है, और इसमें कोई कहने में कमी हुई हो लगती हो तो क्वेश्चन उठाओ, अगर इसमें कोई कमी है या कहने के लिए कुछ रह गया है तो उसमें भी चर्चा करो, क्वेश्चन उठाओ, लेकिन इसको समझो एक बार, ये रास्ता है, ये मार्ग है, मार्ग का ज्ञान हुए बिना मंजिल तक हम कैसे पहुंच सकेंगे। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ये कहां लिख दिया है, छेड़ाला में। सच कहा है दौलत राम जी ने, जो गुण और दोषों को नहीं जानता, आयतन और अनायतन के भेदभाव को नहीं समझता, नहीं ज्ञान नहीं रखता, वो क्या अनायतन को त्याग कर सकेगा और क्या आयतनों को भजेगा, उसका उसको उतना भी ज्ञान नहीं है, और ये बेसिक ज्ञान है, बेसिक का ही ज्ञान नहीं रहेगा तो हम दोषों को क्या त्याग कर सकेंगे और गुणों को क्या भजेंगे। अपने आत्मा के भीतर भी जो मिथ्या दर्शन का उदय है वो आयतन कहलाता है क्या, अनायतन, अनायतन। जो अनंत अनुबंधी कषाय है वो अनायतन की कोटि में है क्या आयतन की कोटि में? अनायतन की कोटि में। जो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय है वो आयतन की कोटि में है क्या अनायतन की कोटि में? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपको उत्तर देना। जो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय है अनंत अनुबंधी का उदय नहीं है, ऐसा गुणस्थान कौन सा? चौथा भी है और तीसरा भी है। तीसरे गुणस्थान में भी अनंत अनुबंधी का उदय नहीं है, लेकिन तीसरा गुणस्थान अनायतन के कोटि में है, क्योंकि तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्या तो दर्शन मोहनी कर्म की प्रधानता से कहा गया है। तीसरे गुणस्थान को दर्शन मोहनी की प्रधानता से व्याख्यान किया है, वहां पर चारित्र मोहनी की प्रधानता नहीं है, अप्रत्याख्यानावरणी की प्रधानता नहीं है। तो जिस कर्म की प्रधानता वहां है वो मिश्र प्रकृति है, मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, ये तीन दर्शन मोहनी मोहनी कर्म के भेद हैं। और यहां पर उदय कौन सा हुआ है? सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व का सर्वघाती है या देशघाती? हाँ, सर्वघाती है। मिथ्यात्व सर्वघाती है कि देशघाती? सर्वघाती। सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती, क्योंकि इसके उदय में रहते हुए सम्यक दर्शन जीव को नहीं रहता, इसलिए सर्वघाती। और फिर उस सम्यक मिथ्यात्व के उदय के काल में उस गुणस्थान में जो उसकी उस जीव की कषाय है वो कौन सी है? वो अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय है। यह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय सम्यक्त्व का घातक नहीं है, सम्यक्त्व का घात वो नहीं करा रहा है तीसरे गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व का घात सम्यक मिथ्यात्व से हो रहा है। अगर वो सम्यक मिथ्यात्व हट जाए और केवल अप्रत्याख्यानावरणी कषाय उदय में रह जाए तो चौथा गुणस्थान बन जाए और उसके साथ सम्यक दर्शन आ जाए, क्योंकि सर्वघाती मिथ्यात्व का भी उदय नहीं रहेगा और सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय नहीं रहेगा, तो वहां पर कौन सा किसका उदय रहेगा? केवल अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय रहेगा, तो सम्यक दर्शन तो दर्शन को तो आना ही पड़ेगा, जबरदस्त आना पड़ेगा अपने पास, नहीं बुलाते हुए भी आना पड़ेगा। किसको भेजने से? मिथ्यात्व को भेज दिया, सम्यक मिथ्यात्व को भेज दिया और अनंत अनुबंधी को भी भेज दिया। अब अकेला अप्रत्याख्यानावरणी रह गया, तो सम्यक दर्शन आपको पूछे बिना आपके पास आएगा, आपका परमिशन लेकर के नहीं आएगा, आऊं क्या नहीं आए। अरे आपने इतना काम कर दिया तो इतना पगार मिलेगा ही, पगार को दूं क्या नहीं दूं कोई पूछता है? आपने एक महीने का काम किया और पगार जितना है उतना मिलता ही है, हर महीने मिलता है, पर पगार देने वाला आपको पूछ के देता है कि इतना पगार दूं क्या नहीं दूं आपको? नहीं, बिन मांगे देने आता है लोग, एक महीने का पगार आपके लिए देना पड़ेगा, अब अगले माह के लिए आप ही सहयोगी हैं हमारे लिए, और वो पगार बिन मांगे देता है। तो सम्यक दर्शन बिन मांगे आता है, पुरुषार्थ कहां करना? सर्वघाती कषाय और सर्वघाती दर्शन मोहिनी प्रकृति को हटाना, हटाने के लिए पुरुषार्थ करो। तो वो पुरुषार्थ अगर हो गया तो निश्चित रूप से चौथा गुणस्थान होगा, और चौथे गुणस्थान में आओगे तो वंदनीय आयतन तो नहीं बनोगे, आदरणीय आयतन बनोगे चौथे गुणस्थान में। पंचम गुणस्थान में भी जाओगे तो वंदनीय आयतन पूजनीय आयतन तो नहीं बनोगे, परंतु आदरणीय आयतन अवश्य बनोगे। ये जिनेंद्र भगवान का सूक्ष्मतम उपदेश है, और यह भव्यात्माओं को यदि ज्ञान नहीं है तो बहुत गड़बड़ होता है, आदरणीय को भी पूजने लगता है, आदरणीय को भी पूजने लगता है और पूजनीय को भी पूजने लगता है, ऐसा गड़बड़ होता है। जिसकी पूजा होती है, जिसको नमोस्तु बोला जाता है, वो नियम से मंगल के स्थान पर रहता है, उत्तम के स्थान पर रहता है, शरण के स्थान पर रहता है। मंगल, उत्तम और शरण, ये चार ही है ना। अगर पंचम गुणस्थान को भी मंगल की कोटि में लेओगे, पूजा करोगे मंगल द्रव्यों से, तो फिर मंगल चार नहीं है ये कहना पड़ेगा। कितने हैं?
पांच।
पंचम गुणस्थान भी मंगल, छठा गुणस्थान भी मंगल, और ऐसे दोनों मंगल हो गए तो नमोकार मंत्र में पांच ही पद हैं और मंगल पद पांच बन गए चार की जगह है, तो ये सब मंगल की जगह दंगल हो जाएगा। दंगल हो जाएगा, अस्त व्यस्तता हो जाएगी। सिद्धांत का जो मार्ग है, जिनेंद्र प्रतिपादित जिन धर्म का जो मार्ग है, तत्व सिद्धांत का, उसमें विकार विकार आएगा, विकार आएगा और असत्य प्रवेश करेगा, दोष प्रवेश करेगा, और फिर आयतन छे के छे पूजनी हो जाएंगे। यदि सम्यक दर्शन होने से पूजनी और भजनी है कोई आत्मा, केवल सम्यक दर्शन होने से, चौथा गुणस्थान होने से, तो चौथा गुणस्थान वाले जीव कहां कहां नहीं है, चारों गति में है, तो नारकी जीव को भी एक अर्घ देना पड़ेगा और तिर्यंश प्राणी भी सम्यक दृष्टि भी है और देशव्रति भी है, पांच गुणस्थान पाए जाते हैं तिर्यंश गति में, और तिर्यंश गति को भी पूजना पड़ेगा, भजना पड़ेगा। अगर पंचम गुणस्थान वर्ती प्रतिमाधारी श्रावक, शुल्लक, ऐलक और पंचम गुणस्थान वर्ती आरिका, इनकी पूजा करोगे आठ मंगल द्रव्यों से, तो फिर मंगल कितने हो गए? पांच मंगल हो गए। तो उस चत्तारी मंगल में पांच मंगल का उल्लेख है क्या? नहीं है। नहीं होते हुए भी वो काम करेंगे तो ये विवेक कहलाएगा क्या? अविवेक।
अविवेक,
अभी ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है, चिंतन नहीं है, पूर्वा पर दोष क्या, गुण क्या है, क्या उपादेय क्या, इस तत्व का भान नहीं है, इसलिए पंचम गुण स्थान को भी अर्घ दोगे। यदि आप इन ग्यारहवीं प्रतिमाधारी और आरिका आदि को भी अर्घ्य दोगे तो पंचम गुणस्थान के अर्घ्य दे रहे हो, और अर्घ्य दे रहे हो तो ये क्या है? मंगल में अंगमंगल हो रहा है। देखो साथ में ही लाते हैं, मंगल के प्रवचन को सुनने के लिए अमंगल विषयों को लाने का निषेध किया था, भूल गए क्या? वो अटक गए कर्ण में। तो पंचम गुणस्थान वर्ती जीव को यदि किसी एक को भी अर्घ्य दोगे तो सबको देना पड़ेगा। पंचम गुणस्थान में भेदभाव तो नहीं करना है, क्योंकि पंचम गुणस्थान है, और पंचम गुणस्थान का नाम क्या है? संयम असंयम। असंयम कितनी प्रतिशत है? 11%। संयम कितने प्रतिशत है? 1%। वो कोई भी हो उतना रहेगा ही। वो गुणस्थान पांचवा है तो उस गुणस्थान में 11 असंयम है और 1 संयम है। ये सब गड़बड़ क्यों हो रहा है? एक वस्त्र के वजह से। तो आते समय दिगंबर आए थे जन्म लेते समय, और जाते समय भी दिगंबर जाने वाले हो, और बीच में ये अंबर क्यों? अंबर लेना असयम, और जैसे आए थे वैसे ही जीवन भर रहना ये संयम। एक अंबर के कारण से दिगंबरत्व डूब रहा है। अंबर यानी वस्त्र, एक अंबर के कारण से बीच में ये दिगंबरत्व डूब रहा है, संयम का घात हो रहा है। जन्मते संयम समय आप दिगंबर थे, लेकिन ऐसा मत समझो कि संयमी था मैं फिर। एक दिगंबर का जन्म का मतलब एक मुनि महाराज का जन्म, ऐसा मत समझो, क्योंकि जन्म के काल में भी आप मुनि नहीं थे, क्योंकि जन्म के काल में आपका गुणस्थान पहला था, दूसरा था, या तो चौथा था। विग्रह गति से आते समय परभव से, विग्रह गति से आते समय गुणस्थान या तो पहला होता है, या तो चौथा होता है, या तो दूसरा होता है। ये तीन ही गुणस्थान होते हैं। तो ये तीन गुणस्थान में कहीं संयम है क्या? संयम नहीं है। लेकिन जीव दिगंबर आता है क्या? नहीं, दिगंबर ही आता है। विग्रह गति में दिगंबर है, शरीर धारण किया, वस्त्र ओढ़ करके नहीं आया, शरीर दिगंबर है, आत्मा भी दिगंबर है, उसके साथ कोई भी वस्त्र का संबंध नहीं है, और जन्म लेते समय दिगंबर जन्म ले रहा है। तो इस दिगंबर अवस्था को वंदनी पूजनी कहोगे क्या? क्योंकि संयम के साथ नहीं आया वो जीव, और संयम के साथ कोई आ भी नहीं सकता। संयम तो उसी भाव में छूट जाता है, यदि संयमी भी हो उसी भाव में छूटता है वो, आचरण साथ में नहीं आता, असंयम साथ आता है। ऐसा क्यों आप पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं कि नहीं? महाराज पूछने वाले ही थे लेकिन आपने ही पूछा। ऐसा क्यों? संयम को कैसे ले जाओगे? सम्यक दर्शन साथ आ सकता है, सम्यक ज्ञान साथ आ सकता है, लेकिन संयम को कैसे साथ ले जा सकते हैं? कैसे साथ ले जा सकते हैं? मरण तो तीन ही गुणस्थान में, और इन गुणस्थानों में रहते समय कषाय कौन सी रहेगी? या तो अनंतानुबंधी रहेगी, या तो अप्रत्याख्यान रहेगी। प्रत्याख्यान भी नहीं रहेगी, केवल प्रत्याख्यान के उदय के साथ और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के उपशमन के साथ हमारा मरण होता ही नहीं। अनादिकाल से किसी जीव का ना हुआ ना होगा, हो ही नहीं सकता। किसके उदय के साथ? प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय हो और अनंतानुबंधी का उपशमन हो, अप्रत्याख्यान का उपशमन हो, उसके साथ, उस संयम के साथ भी मरण नहीं होता। मरण हो सकता है लेकिन विग्रह गति में वो संयम चल नहीं सकता। विग्रह गति में जो कषाय रहती है वो जन्म के काल में भी रहती है। गर्भावस्था में जब जीव आता है उस काल में भी वही कषाय रहती है जो वहां संयम छूटने के बाद रहती है आते समय, और यहां आने के बाद कषाय में से कौन सी कषाय रहती है? आप प्रत्याख्यान या तो अनंतानुबंधी। तो विग्रह गति में दो ही प्रकार की कषाय हैं, ज्यादा से ज्यादा। केवल संज्वलन उदय के साथ मरण तो कर सकते हैं, पर विग्रह गति नहीं हो सकती। केवल प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के साथ मरण तो कर सकते हैं लेकिन विग्रह गति नहीं हो सकती। देखो ये सिद्धांत कैसे कैसे है, ये सब समझना जरूरी है। और भगवान कहते हैं जन्म के समय तुम जरूर दिगंबर थे लेकिन असंयमी थे। किस उदय, किस कषाय के उदय के कारण? या तो अनंतानुबंधी उदय के कारण या तो प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के कारण। प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय से अगर मरण हुआ है और अनंतानुबंधी के साथ मरण नहीं हुआ है तो कहते हैं तुम सम्यक दर्शन के साथ आए हो, तुम सम्यक्त्व के साथ आए हो, तुम्हारा मरण जो है चौथे गुण स्थान में हुआ था उसके उदय के साथ आए हो। मरण के काल में भी सम्यक्त्व था, मरण के पश्चात विग्रह गति में भी सम्यक्त्व रहा और गर्भावस्था में भी सम्यक्त्व रहा और जन्म के काल में भी सम्यक्त्व रहा, इसलिए आयतन का जन्म हुआ है उस घर में। आदरणीय आयतन का जन्म हुआ है उस घर में, जो सम्यक दर्शन के साथ व्यक्ति जन्म लेता है उस कुल को पवित्र करता है, उसी का नाम जैन कुल। यदि आपका जन्म सम्यक्त्व के साथ हुआ है तो आप जैन कुल को धारण करके जन्मे। आपका स्वयं का कुल तो जैन कुल रहेगा सम्यक्त्व के कारण से, और जो जन्म दे रहे हैं वो सम्यक दृष्टि है तो उत्तम जाति, जन्म देने वाली माता अगर सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि जीव को जन्म दे रही है तो उत्तम जाति वाली है। स्वयं के पास सम्यक दर्शन है माता के पास तो उत्तम जाति वाली है। तो जो माता सम्यक दृष्टि होकर अपने संतान को जन्म देती है उसी को जैन जाति बोलते हैं, और जो पिता भी सम्यक दृष्टि है, दोनों माता पिता सम्यक दृष्टि हैं और वो संतान को जन्म दे रहे हैं तो वो कुल भी जैन कुल है, उत्तम कुल। यहां पर जैन का तात्पर्य जीतने वाला कुल, जीता हुआ कुल, जीत गया जो, ऐसा कुल। किसको जीत लिया? अनंतानुबंधी को जीत के आ गए, अपनी कषाय को जीत के आ गए, मिथ्यात्व को जीत के आ गए, दर्शन मोहिनी को जीत के आ गए, सम्यक्त्व के साथ वहां से यहां आ गए, जीत करके आ गए और मनुष्य पर्याय में आकर के जन्म ले लिया और किसी दूसरे के माता पिता बन गए जन्म देते समय। तो जीत कर करके आए हैं इसलिए जैन कुल है। क्या क्या जीत के आ गए? मिथ्यात्व को और अनंतानुबंधी को। अब जीतने का काम और शेष है, अब प्रत्याख्यानावरणी को भी जीतना है, प्रत्याख्यानावरणी को भी जीतना है, संजोरण को भी जीतना है। जीतने का कार्य, जब तक अरहंत नहीं बनोगे तब तक जीतने का कार्य शेष है। घाती कर्मों को संपूर्ण जीतना ये जिनत्व है, और घाती कर्मों में से कुछ कर्म जीतना ये जैनत्व है। बहुत डिटेल हो गया, बहुत डीप हो गया, इसको चिंतन करो, मनन करो। करना क्या है? अपने को, आत्मा को सुधारना है। असली जैनत्व ये सब प्राणियों में आने के लिए तैयार है। देवगति में भी जो यहां से सम्यक दृष्टि मरण करके देवगति में जन्म ले रहा है, सम्यक्त्व अगर साथ गया है तो अनंतानुबंधी साथ नहीं गया है, अनंतानुबंधी का उपशमन है, मिथ्यात्व का उपशमन है, और प्रत्याख्यानावरणी कषाय के साथ और सम्यक्त्व के साथ जन्म ले रहा है, तो एक मनुष्य गति से परगति में जन्म लेने वाला एक तिर्यंश, यहां से तिर्यंश पर्याय से स्वर्ग जा रहा है, 16वें स्वर्ग तक जाता है तिर्यंश भी, वहां सम्यक्त्व के साथ जन्म ले सकता है। सम्यक दृष्टि तिर्यंश मरण करके 16वें स्वर्ग में भी जन्म ले सकता है, तो वहां पर जीत करके वह जन्म ले रहा है। क्या जीत करके? अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी, इन दो कर्मों को जीतने से वह देव भी जैन है। और सम्यक्त्व के साथ यदि नरक भी जाओगे तो जीत के जाओगे, वो नारकी जीव भी जैन है। जीत के जाओगे और भोग भूमि में जन्म लेओगे तिर्यंश बनकर या मनुष्य बनकर, वो भोग भूमि का मनुष्य और भोग भूमि का तिर्यंश भी जैन है। या जीत करके आओगे, नरक से आओगे और मनुष्य गति में जन्म लेओगे तो ये मनुष्य गति का मानव भी जैन है। आपको सम्यक दर्शन के साथ आना होगा, तो आपको जैन कहा जा सकता है। आप अपनी विकारी भावों को जीत करके आना होगा, तब आपको सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है, जैन कुल कहा जा सकता है। जैन शब्द ही कषायों को जीतने से और कर्मों को जीतने से बना हुआ है। जीतने का जो जीत रहा है वो जैन है और जो जीत चुका है वो जिन है, वो परमात्मा है, वो सर्वज्ञ देव है, वो अरहंत देव है। अरहंत देव के कितने कर्म नहीं है? घाती कर्म चार नहीं है। तो इन्हीं घाती कर्मों में से अनंत अनुबंधी घाती कर्म को और दर्शन मोहिनी को जीतने से जैन बनता है। जैनत्व का जैनत्व की शुरुआत चौथे गुणस्थान से होती है। कुल में जन्म लेने मात्र से कोई जैन नहीं बनता, वो एक सामान्य मानव रहता है, एक सामान्य मनुष्य का जन्म होता जन्म लेते समय। मिथ्या दर्शन के साथ जन्म लिया, सम्यक्तों को साथ लाए नहीं और जन्म लिया है। आप एक सामान्य मानव है, ऐसा जन्म तो एक निबोध जीव का भी हो रहा है मिथ्या दर्शन के उदय के साथ, अनंत अनुबंधी उदय के साथ, पहले गुणस्थान के साथ जन्म एक निबोध जीव का भी हो रहा है, द्विइंद्री जीवों का हो रहा है, तीन इंद्री चौर इंद्री पंच इंद्री संगी असंगी जीवों तक। नियम से पहले गुणस्थान में मरण होता है और पहले गुणस्थान के साथ ही जन्म होता है। सम्यक्तो को लेकर के निगोद में जन्म नहीं ले सकते, द्विइंद्री नहीं बन सकते। तो उस जन्म में और हमारे जन्म में अंतर क्या है? कॉमन है, हम सब संसारी प्राणियों की तरह, सब कॉमन संसारी प्राणियों की तरह हम भी कॉमन हैं। जैसा वो जन्म ले रहे हैं वैसे ही जन्म ले रहे हैं। कौन से आत्मा के विकारी भावों को जीता, कौन से कषायों को जीता जो अनादिकाल से कर्म चले आ रहे हैं, किसका किसको जीता? नहीं जीता है इसलिए सामान्य मानव है, सामान्य जीव है। एक इंद्री की तरह सामान्य जैसा वो जीव है वैसे ही आप हैं। उनका भी पहले गुणस्थान के साथ जन्म हुआ है, आपका भी पहले गुणस्थान के साथ जन्म हुआ है। यदि पूर्व में आप मनुष्य होते, नारकी होते, या देव होते, या त्रिरंच होते, संगी पंचेंद्री होते, तो सम्यक दर्शन को लेकर के भी आ सकते थे। सम्यक दर्शन को लेकर के यदि देवगति से आए हुए हो तो वहीं से जैन बन करके आए हो, वहीं से चौथे गुणस्थान को जैन कहा जाता है। चौथे गुणस्थान के जीव को जैन कहा जाता है क्योंकि उसने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को जीत लिया। तो यह प्राणी मात्र का धर्म, चतुर्गति में रहने वाले समस्त प्राणियों का धर्म, जैन धर्म जीतने वालों का धर्म है। ये संप्रदाय का नाम नहीं है, जैन यह शब्द संप्रदाय वाचक नहीं है, जिनेंद्र यह संप्रदाय वाचक शब्द नहीं है। किसी ऐसे एक महान आत्मा का नाम है वो, जिन्होंने अपने आत्मा के विकारी भावों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया और केवल ज्ञान प्रकट करके परमात्म दशा को प्राप्त कर लिया, उन महान आत्मा का नाम है जिन। और जैन किसका नाम? जैन उस आत्मा का नाम है, उस महान आत्मा ने जिसको जीता है, जिन विकारी कषायों को विकारी भावों को जीत करके वो स्वयं जिन बने हैं, परमात्मा बने हैं। उन्हीं कर्मों को जीतने का, उन्हीं कर्मों को जीतने का कुछ प्रयास जो कर रहा है या कर चुका है उनका नाम जैन है, उस जीवात्मा का नाम जैन है। संप्रदाय का नाम, वर्ग का नाम, किसी समुदाय का नाम जैन नहीं है। ऐसा अगर जैन होता तो संप्रदाय में किसी को ग्रहण करने मात्र से, स्वीकार करने मात्र से भी उनको जैन कहा जा सकता है, लेकिन जैन नहीं है। यहां आने के बाद वही काम करना पड़ेगा जो यहां जिनेंद्र भगवान ने कहा है जैन बनने के लिए। तो जैन धर्म ये किसी के लिए बंधित धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन ये केवल एक वर्ग ही प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। संसार के सारे प्राणी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और सम्यक दर्शन होता है अपने ही दोषों को जीतने से, मिथ्यात्व को जीतने से और कषाय को जीतने से सम्यक्तु की उत्पत्ति होती है। और ऐसे हमारे आत्मा की विजय, हमारे आत्म वैभाविक परिणति का जो विजय होता है प्रारंभिक दशा में वो मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का होता है, उससे सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है और वह सम्यक्त्व जैनत्व कहलाता है। जन्म के बाद हम जैन बनते हैं, जन्म के काल में जैन नहीं रहते, रह भी सकते हैं पर सम्यक्त्व को ला करके जन्म ले रहे हो तो जैन। तो धर्म जो है यह आत्मा के गुण और दोषों पर डिपेंड है, संप्रदाय पर डिपेंड नहीं। किसी संप्रदाय वर्ग विशेष का नाम धर्म नहीं है। धर्म वो है, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी गति हो, कोई भी प्राणी हो, सिर्फ इतना आवश्यक वह प्राणी संघी पंचेंद्री हो, तैतरेंश हो, देव हो, नारकी हो या मनुष्य हो, संघी पंचेंद्रिय इन चार गति के जीवों को वो किसी भी जाति में, कुल में, वर्ग में, संप्रदाय में कहीं भी जन्म क्यों न लिया हो, वो अगर अपने पास रहने वाले अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को जीत लेता है तो जैन बनता है। और ये जैन शब्द किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं है, ये आत्मा की एक पदवी है, यह आत्मा की एक पवित्र अवस्था का नाम है, ये किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं है। ये कर्मों को जीतने का नाम, कर्म आत्मा को विकारी बना रहे हैं, उन कर्मों को जीतने का नाम है जैनत्व। तो यह जैनत्व बहुत टाइम हो गया, खत्म होता नहीं कभी, और जो विषय लेना था वो रह गया, जिसका निवेदन किया था वो पूरा रह गया। मैं भूमिका बना रहा था और ये भूमिका ही अच्छा लगा, तो ऐसा हो जाता है मेरा, क्या करेंगे। तो आज का निवेदन का जो विषय था मैं कल करूंगा, कल भी समय उतना ही लगता है जितना आज लग गया, तो 10-15 मिनट पहले आते हैं तो प्रवचन जल्दी शुरू करेंगे कल के दिन 8 बजे। हाँ, क्योंकि कल का 3 विषय है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग।
परम जन सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय।